आज हम जिस कृति की दुनिया में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो 1950 के दशक के अमेरिकी समाज की चमक के पीछे छिपे, मतलब उसके खोखलेपन को दिखाता है।
बिल्कुल।
हम बात करें रिचर्ड येट्स के 1961 में आए उपन्यास रेवोल्यूशनरी रोड की।
येट्स को लेखकों का लेखक भी कहा जाता है।
हाँ, और शायद इसलिए क्योंकि वो उन सच्चाइयों को लिखने की हिम्मत रखते थे जिन्हें जिन्हें समाज देखना नहीं चाहता,
और वो सच अक्सर बहुत असहज करने वाले होते हैं। ये उपन्यास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अमेरिका की कहानी है।
एक ऐसा दौर जब बाहर से सब कुछ बेहतरीन लग रहा था।
हाँ, आर्थिक समृद्धि थी, लोग शहरों से निकलकर उपनगरों में खूबसूरत घर बना रहे थे, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा गया।
लेकिन ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सपना था या एक खूबसूरत पिंजरा?
सही बात है। इसी दौर को चिंता का युग या एज ऑफ एंजाइटी भी कहा गया, क्योंकि बाहरी तरक्की के बावजूद अंदर एक रूहानी खालीपन था।
और मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि उपन्यास का नाम है रेवोल्यूशनरी रोड। रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। पर क्या उस सड़क पर रहने वाला कोई भी सच में क्रांति कर रहा था, या फिर ये नाम ही एक गहरा कड़वा व्यंग्य है?
मुझे लगता है इसी सवाल के साथ कहानी के किरदारों से मिलना चाहिए।
हाँ, चलिए मिलते हैं।
तो कहानी हमें 1955 में कनेक्टिकट के एक ऐसे ही उपनगरीय इलाके में ले जाती है।
हमारे सामने है फ्रैंक और एप्रिल वीला,
जो ऊपर से देखने पर एक आदर्श जोड़ा लगते हैं।
बिल्कुल, खूबसूरत, दो प्यारे बच्चे, एक अच्छा घर, और वो खुद को अपने पड़ोसियों से अलग समझते हैं। ज्यादा समझदार,
ज्यादा कलात्मक।
उन्हें लगता है कि वो इस साधारण जिंदगी के लिए नहीं बने हैं, वो कुछ खास हैं।
लेकिन यही खास होने का भ्रम
उनकी सबसे बड़ी समस्या है।
हाँ।
सतह के नीचे उनका रिश्ता निराशा, कड़वाहट और मतलब अधूरी हसरतों के बोझ तले घुट रहा है। और उपन्यास की शुरुआत ही एक नाकामी से होती है,
अप्रैल के नाटक से, है ना? हाँ बिल्कुल। अप्रैल जो कभी अभिनेत्री बनना चाहती थी, एक स्थानीय नाटक द पेट्रिफाइड फॉरेस्ट में हिस्सा लेती है,
और उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहता है।
बहुत ही खराब। और वो नाटक एक तरह से उनकी अपनी जिंदगी का रूपक बन जाता है।
बड़ी उम्मीदों से शुरू पर अंत में एक असफलता।
सही। और उस रात नाटक के बाद घर लौटते हुए फ्रैंक और अप्रैल के बीच जो भयानक झगड़ा होता है, वो उनके रिश्ते के सारे मुखौटे नोच फेंकता है।
और ये झगड़ा सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये हमें पहली बार उनके किरदारों की असलियत दिखाता है।
बिल्कुल।
फ्रैंक जो बाहर से इतना आत्मविश्वासी दिखता है, और अप्रैल जो इतनी हारी हुई लगती है, असल में वो है कौन?
फ्रैंक व्हीलर एक ऐसा इंसान है जो आत्मधोखे में जी रहा है।
अच्छा।
वो खुद को एक बुद्धिजीवी समझता है, दार्शनिक समझता है, लेकिन काम करता है एक ऐसी कंपनी में जहां वो सिर्फ मशीनों के बारे में लिखता है। एक ऐसी नौकरी जिससे वो नफरत करता है।
उसका सबसे बड़ा डर है साधारण बन जाना।
हाँ, और वो अपनी जिंदगी की बोरियत के लिए अप्रैल को जिम्मेदार ठहराता है।
और अप्रैल व्हीलर, वो शायद इस कहानी की सबसे दुखद पात्र है। एक ऐसी महिला जिसकी अपनी पहचान, उसकी कलात्मक आकांक्षाएं, वो सब पत्नी और माँ की भूमिकाओं के नीचे दब कर रह गई हैं।
वो 1950s के दशक की उन लाखों महिलाओं का प्रतीक है।
हाँ, जिनके पास सपने तो थे पर उन्हें पूरा करने के रास्ते समाज ने बंद कर रखे थे।
वो उस घुटन को महसूस तो कर सकती है पर उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं जानती।
और इसी घुटन के माहौल में फ्रैंक के 30वें जन्मदिन पर अप्रैल एक उम्मीद की किरण लेकर आती है।
एक ऐसी योजना जो सुनने में पागलपन लगती है। वो कहती है, चलो यहाँ सब कुछ बेचकर पेरिस चलते हैं।
पेरिस मतलब ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये उनके लिए आजादी का, कला का, एक प्रामाणिक जीवन का प्रतीक है।
हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एक समाधान था या ये भी एक तरह का
आत्मधोखा ही था, बस एक नए और ज्यादा रोमांटिक पैकेज में।
और फ्रैंक को अपनी इस बेमतलब नौकरी से आजादी मिल जाएगी।
सही। उसे वक्त मिलेगा ये खोजने का कि वो असल में क्या है, वो जीवन में क्या करना चाहता है।
और इस एक विचार से उनके मुरझाए हुए रिश्ते में जैसे जान आ जाती है।
बिल्कुल। वो फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं।
मतलब वे जगह नहीं बल्कि खुद को बदलना चाहते थे। उन्हें लगा कि माहौल बदलने से उनकी आत्मा भी बदल जाएगी।
हाँ, पर येट्स यहीं पर कहानी में दूसरे किरदारों को लाते हैं जो इस सपने पर रोशनी डालते हैं। एक तरफ हैं शेप और मिली कैम्बल,
उनके पड़ोसी,
जो उसी पारंपरिक उपनगरीय जीवन का प्रतीक हैं जिससे फ्रैंक और अप्रैल
भागना चाहते हैं।
हाँ, उनकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना या बेचैनी नहीं है, बस एक सुकून भरी अनुरूपता है, और दूसरी तरफ है जॉन गिविंग्स।
जॉन गिविंग्स एक ऐसा किरदार जिसे भुलाया नहीं जा सकता।
बिल्कुल,
वो उनकी रियल एस्टेट एजेंट का बेटा है जो एक मानसिक अस्पताल में इलाज करवा रहा है।
साहित्य में मूर्ख या द फूल का किरदार अक्सर सबसे बुद्धिमान होता है ना?
हाँ, क्योंकि वो समाज के बनाए नियमों और दिखावे से बंधा नहीं होता। जॉन वो अपनी बीमारी की वजह से वो सच देख पाता है जिसे फ्रैंक और अप्रैल देखने से डरते हैं,
और वो अकेला इंसान है जो उनकी पेरिस की योजना की अहमियत को समझता है।
अच्छा।
हाँ, जब वो उनके प्लान के बारे में सुनता है तो खुशी से उछल पड़ता है। वो कहता है कि ये शानदार है, क्योंकि वो समझता है कि ये भागना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को खोजना है।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत सपनों पर हावी होने लगती है,
और यहाँ येट्स का मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद अपने चरम पर होता। वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि फ्रैंक असुरक्षित है, वो हमें फ्रैंक के दिमाग के अंदर ले जाते हैं।
हम उसके हर छोटे बड़े झूठ को, हर बहाने को बनते हुए देखते हैं,
और उसे बहाने मिल भी जाते हैं। दो चीजें एक साथ होती हैं।
एक तो प्रमोशन।
हाँ, फ्रैंक को अचानक उसकी नौकरी में प्रमोशन का प्रस्ताव मिलता है, साथ में तनख्वाह भी बढ़ जाती है। सालों से जिस काम को वो कोसता आया था, वहां से मिली तारीफ वो उसके कमजोर अहंकार को सहलाती है।
उसे पहली बार महत्वपूर्ण महसूस होता है।
बिल्कुल, और ठीक उसी वक्त अप्रैल को पता चलता है कि वो तीसरी बार गर्भवती हैं।
और फ्रैंक इन दोनों घटनाओं को पेरिस न जाने के लिए एक ढाल बना लेता है।
हाँ, वो इसे जिम्मेदारी का नाम देता है, लेकिन असल में
ये उसकी कायरता है।
कायरता है। वो इस विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी घर चलाएगी और वो खुद को खोजेगा। ये उसकी मर्दानगी की पारंपरिक धारणा पर एक हमला है
जिसे वो सहन नहीं पाता।
येट्स यहाँ फ्रैंक की सोच को इतनी बारीकी से दिखाते हैं। फ्रैंक खुद को यकीन दिलाता है कि रुकना ही सही फैसला है, कि वो एक अच्छा पति और पिता बन रहा है,
और वो अप्रैल को भी इस समझदारी के लिए मना लेता है।
और यहीं पर जॉन गिविंग्स की दूसरी यात्रा होती है, जो कहानी का सबसे क्रूर और सबसे सच्चा क्षण है।
हाँ, जब जॉन को पता चलता है कि पेरिस का प्लान रद्द हो गया है तो उसका भ्रम टूट जाता है,
और वो उन पर वो सच्चाई फेंक कर मारता है जिसे वे सुनना नहीं चाहते। वो फ्रैंक से कहता है, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था, तुमने बस अपनी पत्नी को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया।
और फिर वो अप्रैल की तरफ मुड़कर कहता है,
और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात को समझती हो। ये बातचीत उनके रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील साबित होती है।
जॉन के जाने के बाद उनके बीच कुछ नहीं बचता सिवाय नफरत के। सपना मर चुका है,
और अप्रैल के लिए ये अनचाहा गर्भ उसकी कैद का, उसके टूटे हुए सपनों का एक जीता जागता सबूत बन जाता है।
और हताशा में वो एक भयानक कदम उठाती हैं।
हाँ, एक अंधेरे क्षण में वो अकेले ही गर्भपात करने का प्रयास करती है।
ये एक भयानक फैसला है जो उसकी पूरी निराशा को दिखाता है,
और इसका अंत भी भयानक होता है। प्रक्रिया गलत हो जाती है, बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, और अस्पताल में अप्रैल की मृत्यु हो जाती है।
एक खूबसूरत सपने का अंत एक विभत्स त्रासदी में होता है। एक पल की खामोशी के बाद ये कहानी हमें अंदर तक हिला देती है, क्योंकि येट्स किसी को भी विलेन नहीं बनाते।
सही बात है।
फ्रैंक कायर है, लेकिन वो राक्षस नहीं है। अप्रैल दुखद है, पर वो भी दूध की धुली नहीं है।
येट्स बस हमें दिखाते हैं कि कैसे साधारण लोग छोटे छोटे समझौतों और रोज बोले जाने वाले झूठ से अपनी ही जिंदगी को तबाह कर लेते हैं।
बिल्कुल। और उपन्यास का जो उपसंहार है, एपिलॉग, वो तो शायद कहानी से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है।
हाँ, अप्रैल की मौत के बाद फ्रैंक एक खोखले इंसान में बदल जाता है।
वो बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास भेज देता है और उसी नौकरी में वापस चला जाता है जिससे वो भागना चाहता था।
वो भावनात्मक रूप से सुन्न हो चुका है।
और अंत में कहानी का आखिरी दृश्य, जॉन गिविंग्स के पिता मिस्टर गिविंग्स,
हाँ,
वो अपनी पत्नी की कभी न खत्म होने वाली बातों से बचने के लिए अपने कान में लगे श्रवण यंत्र यानी हियरिंग एड की आवाज बंद कर देते हैं। एक खामोशी छा जाती है,
और वो खामोशी ही इस उपन्यास का सार है। ये उस भावनात्मक बहरेपन और संवादहीनता का प्रतीक है जिसने व्हीलर परिवार को बर्बाद कर दिया।
मतलब वे लगातार बात कर रहे थे, पर असल में एक दूसरे तक कोई बात
पहुंच ही नहीं रही थी।
सबसे डरावनी बात यह है कि व्हीलर दंपत्ति कोई असाधारण लोग नहीं थे।
नहीं, वो हम जैसे ही थे जिनके पास सपने थे।
येट्स का असली संदेश यह है कि त्रासदी किसी एक बड़ी गलती से नहीं होती, बल्कि हर रोज किए गए उन छोटे छोटे समझौतों से होती है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं।
और यो उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये सवाल उठाता है प्रामाणिकता का, कि क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या वो जिंदगी जो समाज हमसे जीने की उम्मीद करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर पीढ़ी को जूझना पड़ता है।
समापन कथन।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।